ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவானந்த லஹரி, பிரசன்டட் பாய் ஆதிகுரு சங்கராச்சாரியாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
நித்யம் மகேசம் ரஜதகிரிநிபம் சாருச்சந்திராவதன்சம் ரத்னகல்போஜ்வலாங்கம் பரசுமிருகபரா பீதிஹஸ்தம் பிரசன்னம் பத்மாசீனம் சமந்தாத்ஸ்துதமமரகணர் வ்யக்ரக்ருத்திம் வசானம் விஸ்வாத்யம் விஸ்வவந்த்யம் நிகில பயஹரம் பஞ்சவக்த்ரம் த்ரிநேத்ரம் நாராயணம் பத்மபவம் வசிஷ்டம் சக்திம் ச தத்புத்ர பராசரம் ச வ்யாஸம் சுகம் கௌடபதம் மஹந்தம் கோவிந்த யோகீந்திர மதஸ்ய சிஷ்யம் ஸ்ரீ சங்கராச்சார்ய மதஸ்ய பத்ம பாதம் ச ஹஸ்தமலகம் ச சிஷ்யம் தந்த்ரோடகம் வார்த்திக காரமண்யான் அஸ்மத் குரும் சந்ததமானதோஸ்மி. விசுத்த ஜான தேஹாய த்ரிவேதி திவ்ய சக்ஷுஷே ஸ்ரேயஃ ப்ராப்தி நிமித்தாய நமஹ ஸோமார்த்த தாரிணே. ஓம் சாந்திஹி சாந்திஹி சாந்திஹி. சந்திரசேகர 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 பாஹி மாம் சந்திரசேகர 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 பாஹி மாம் சந்திரசேகர 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 ரக்ஷமாம் சந்திரசேகர 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 ரக்ஷமாம். ராம ராகவ ராம ராகவ ராம ராகவ பாஹி மாம் ராம ராகவ ராம ராகவ பாஹி மாம் ராம ராகவ ராம ராகவ ராம ராகவரக்ஷமாம் ராம ராகவ ராம ராகவ ராம ராகவரக்ஷமாம். கிருஷ்ண கேசவ கிருஷ்ண கேசவ பாஹி மாம் கிருஷ்ண கேசவ கிருஷ்ண கேசவ கிருஷ்ண கேசவ பாஹி மாம் கிருஷ்ண கேசவ கிருஷ்ண கேசவ கிருஷ்ண கேசவ ரக்ஷமாம் கிருஷ்ண கேசவ கிருஷ்ண கேசவ कृष्ण केशव रक्षम चंद्रशेखर 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 पहिमां चंद्रशेखर चंद्रशेखर पहिमां चंद्रशेखर 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 रक्षमां चंद्रशेखर 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 रक्षमां चंद्रशेखर रक्षमां चंद्रशेखर रक्षमां ओ ओ ओ प्रेमपुरी आश्रम आयोजित गीता चिंतन माला के अंतर्गत आदिगुरु शंकराचार्य विरचित शिवानंद लहरी स्तोत्र के आधार पर विचार चल रहा है। अभ्यास के लिए 79 श्लोक। नित्यं योगी मना सरोज दलसन चारक्षमस्त्वत्क्रम शंभोत्तीन कथम कठोर यमराट वक्ष कटा कवाट क्षति अत्यंतं मृदुलं त्वदंग्रियुगलम् आमे मन चिंतयत् एतत् लोचन गोचरं कुरु विभो हस्तेन संवाहये। यस्यत्येष जनिं मनो मनुस्य कठिनम् तस्मिन्नता नीतिमत् रक्षायै गिरिसीम्नि कोमलपदौ न्यासपुराभ्यसितः नो चेद्दिव्य गृहान्तरेषु सुमनस् तल्पेषु वेद्यादिषु प्रायसत्सु शिलातलेषु नटनम् शम्भो किमर्थं तव कञ्चित् कालम् मा महेश भवतः पादारविन्दार्चनैः कञ्चिद्ध्यानसमाधिमिच्च नतिभिः कञ्चित् कथा कर्णनैः कञ्चित् कञ्चिद्दवेक्षणैश्च नुतिभिः कञ्चिद्दशामीदृशिम् यः प्राप्नोति मुदा त्वदर्पितमनः जीवन स मुक्तः खलु। வாணத்வம் ரிஷபத்தமர்த்தபபுஷா வாரியத்வமார்யாபதி போணித்தம் சகிதா மிருதங்க பஹதா சித்யாதி ரூபம் ததோ தொத்பாதே நயனார்ப்பணம் ச கிருதவான் த்வத்தேஹ பாகோ ஹரிஹி பூஜ்யாத் பூஜ்யதர ஸயேவ ஹி ந சேத் கோ வா ததன்யோதிதகஃ. சிவ பக்தி சே யுக்த ஸ்தோத்ர ஹை சங்கராச்சாரிய ஜி. பகவான் சிவ பிரதி கைசா பாவ ரக்தே ஹை ஔர் கைசா பாவ வியக்த கர்த்தே ஹை. इस श्लोक में आदिगुरु शंकराचार्य जी ने शिव के बारे में दो संबोधन किया है. पहला संबोधन है शंभो, हे शंभो. संबोधन करने के बाद कुछ कहो तो वो व्यक्ति सुनता है, और बिना संबोधन किए कुछ कहोगे तो जरूरी नहीं कि वह तुम्हारी बात सुन ले. हो सकता है जिस समय तुम अपनी बात कह रहे हो उस समय वह व्यक्ति अन्य मनस्क हो, तो फिर तुम्हारी बात सुनेगा कैसे. संबोधन का अर्थ है अभिमुखीकरण, संबोधनम. संबोधनम का अर्थ होता है अभिमुखीकरण, यानी उसका मुख अपनी तरफ करना, घुमाना, ये संबोधन है. तुम अभी मेरे तरफ देख रहे हो, कोई पीछे वाला व्यक्ति हे वसंत भाई करके बुलाएगा तो वसंत भाई तुरंत मुड़ेंगे, पीछे मुड़ जाएंगे. किसने बुलाया, क्यों बुलाया, ये अचानक मुझे किसने बुलाया और क्यों बुलाया, ये स्वाभाविक ही है. मौनी सभी मेरे तरफ देख रहा है, मेरी बात को सुनने के लिए ध्यान लगाकर, कान लगाकर, एक टक देखते हुए बैठा है. अचानक पीछे से कोई बुलावे, हे मौनीश भाई, फट मुड़े के देख लेगा, किसने बुलाया, क्यों बुलाया. कान का काम है सुनना, उसने बुलाया, कान ने सुन लिया. मुख क्यों मोड़ना था, क्या जरूरत थी मुख मोड़ने की. तो संबोधन में ये ताकत है कि उसके मुख को अपने मुख के तरफ घुमा देता है, समझे कि नहीं. इसीलिए संबोधन का अर्थ किया अभिमुखीकरण. अभिमुखीकरण का अर्थ होता है अपने तरफ उसके मुख को करना. तो शंकराचार्य जी ने भगवान शिव के बारे में एक नाम लेकर संबोधन किया. क्या कहकर संबोधन किया, शंभो. जिसकी सत्ता किसी अन्य निमित्त के बिना स्वयं सिद्ध हो उसको कहते हैं शंभो. जिसकी सत्ता किसी अन्य साधन या अन्य कोई निमित्त के बिना सिद्ध हो उसको शंभो कहते हैं. शंभो की व्युत्पत्ति है स्वयमेव भवति इति शंभो. और को होने के लिए कोई और की आवश्यकता पड़ती है. पंचदशी सुन रहे हो आजकल सुबह के प्रवचन में, वेदांत के अनुसार ईश्वर को सिद्ध होने के लिए भी माया की आवश्यकता पड़ी। पर साधन सापेक्ष जिसकी सत्ता हो उसको शंभू नहीं कह मैं, माया के अपेक्षा से ईश्वर शंभू नहीं हो सकता है, क्योंकि ईश्वर स्वयं सिद्ध नहीं है। ईश्वर की सत्ता स्वयं सिद्ध नहीं है। तुम लोग वेदांती हो इसलिए मैं वेदांत की बात कर देता हूं भाई। ईश्वर की सत्ता स्वयं सिद्ध सत्ता नहीं है, समझ में तो आई ना बात। माया के चलते ईश्वर सिद्ध हुआ है। माया बिंबो वजीकृत्य ताम सात सर्वज्ञ ईश्वरा, माया में ब्रह्म का जो प्रतिबिंब पड़ा, माया उपाधि सहित प्रतिबिंब का नाम ईश्वर पड़ा। तो ईश्वर स्वयंभू कैसे हो गया भाई? ईश्वर की सत्ता स्वयं कहां से सिद्ध हुई? इसलिए ईश्वर को संभोग करके संबोधन नहीं किया जा पाएगा। अविद्यावशकस्तु अन्य तद्वैचित्र्याद अनेकदा, प्रज्ञ की सत्ता भी स्वयंभू नहीं है। अविद्या के संबंध से प्रज्ञ की सत्ता सिद्ध है, इसीलिए प्रज्ञ स्वयंभू नहीं है। जो स्वयंभू नहीं है तो शंभू कहां से होगा? अब तेजस की सत्ता भी शंभू है नहीं है, स्वयं सिद्ध नहीं है। वृष्टि सूक्ष्म के कारण सूक्ष्म कार्यों की अपेक्षा से तेजस है तो शंभू नहीं है। हिरण्यगर्भ की सत्ता भी स्वयं सिद्ध नहीं है, समष्टि सूक्ष्मों के चलते हिरण्यगर्भ की सिद्धि है। और विश्व की सिद्धि भी व्यष्टि स्थूल के कारण विश्व की सिद्धि है, और वैश्वानर की सिद्धि समष्टि स्थूल के कारण है। तो ये जो चार चैतन्य हैं इनको शंभो संबोधन नहीं हो सकता है। तो शंभो किसको कहेंगे? तो ब्रह्म को ही शंभो कहना पड़ेगा, ये क्योंकि वो स्वयं सिद्ध है। उसकी सिद्धि, उसके सत्ता, उसका अस्तित्व किसी उपाधि के चलते नहीं है। तो शंभो शब्द के, शंभो शब्द का अर्थ समझ में आया ना आप? तो एक प्रकार से वह शुद्ध ब्रह्म के बारे में संभो। लेकिन कहते हैं फिर संबोधन तो किया संभो। शिवजी को लगा ये मेरे बारे में कौन मुझे पहचानता है और मेरा ये संभो नाम लिया? मेरे असलियत को पहचाने बिना कोई संभो नाम ले पाएगा? मैं स्वयं सत्ता वाला हूं, स्वयं सिद्ध हूं, ये तो कोई जानने वाला ही संबोधन करेगा। नित्यम योगी मन सरोज दला संचार क्रमोपाद क्रमोपाद विक्षेपे तत्क्रम, आपके चरण, हे शंभो आपके चरण। संबोधन किया निरुपाधिक नाम लेकर, और विश्लेषण कर रहे हैं स्वपाधि का। ब्रह्म का तो कोई चरण है ही नहीं, चरण तो माया उपाधि वाले का ही होगा। त्वत्क्रम माने आपके चरण। कहां विचरण करते हैं? नित्यम योगी मन सरोच दल संचार क्षमा, योगियों के जो मन कमल है, मन सरोज, योगियों के मन रूपी पुष्प, मन रूपी कमल में ही आपके चरण का संचार यानी आपके पांव के द्वारा आपका गमन संभव है। संचारक क्षमा तत्क्रम योगी मन सरोज दल संचार क्षमा नित्यम। उनके मन रूपी हृदय रूपी कमल में तो आपका चरण नित्य विचरण करता है, पड़ता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी के प्रधान चार शिष्यों में से एक शिष्य का नाम है पद्मपादाचार्य, सुना है ना? चार शिष्यों में से एक शिष्य का नाम क्या है? पद्मपादाचार्य। वो नित्य निरंतर गुरु जी की सेवा करते थे। कई प्रकार के सेवा हैं तो उनमें से उनकी सेवा ड्यूटी क्या थी? लंगोटी धोना, वस्त्र धोना, कपड़े धोना। तो एक दिन कपड़े धोने के लिए चले गए नदी के किनारे, तो कोई विशेष पर्व आदि रहा होगा, इस किनारे में बैठकर कपड़ा धुआ करते थे प्राय करके। उस दिन बहुत भीड़ भाड़ रहा होगा, तो उससे बचने के लिए वह नदी उस पार चले गए और उस किनारे में जाकर वहां भीड़ भाड़ तो थी नहीं, आराम से कपड़े धोने लग गए। कपड़ा धो धा के जब आने लगे तो नदी में बहुत पानी आ गया, पुल तो थे नहीं। पहले पानी कम था तो चले गए थे, अब पानी बहुत ज्यादा आ गया। अब कपड़े सब सूख जाग गए और कपड़ा गठरी बना ली, इधर आने की तैयारी किया तो नदी बड़ी हुई होने के कारण नहीं आ सके, किनारे में ही खड़े रह गए। अब इधर स्वाध्याय का समय हो चुका है, अन्य जो तीन गुरु भाई थे वो लोग तो तैयार होकर ठीक टाइम में आ गए, जैसे आप आ गए, गुरु आने से पहले आ गए ना। अब वो शिष्य आया नहीं, तीन आ गए, चार तो आए नहीं। अब देखो कुल चार श्रोता है, वो उनमें से तीन आए, चौथा ना आए तो वक्ता को मजा नहीं आएगा, वो चौथे की भी अब प्रतीक्षा करेगा ना, आने दो उसको। तो और लोगों ने कहा कि महाराज वो तो कुछ समझता नहीं है, मूर्ख है, अब कब आएगा कब आएगा, कहां गया है, समय का ख्याल रखना चाहिए ना, तो इसलिए शुरू करिए स्वाध्याय, उसकी प्रतीक्षा मत करिए। शंकराचार्य जी ने कहा कि नहीं बेटा, वो नियमित सुनने वाला होने के कारण कभी आवे कभी ना आवे हमारे जैसे, तो कोई प्रतीक्षा करेगा नहीं, लेकिन जो नियमित आएगा उसकी तो प्रतीक्षा करनी चाहिए। बहुत समय हो गया महाराज, शुरू करिए। तो शंकराचार्य जी ने आवाज लगाई, हे तू कहां है, क्यों लेट कर रहा है, जल्दी आ, स्वाध्याय का समय हो रहा है, आ। गुरु जी का आवाज उसके कान में पड़ गया। विचार करेगा अब मैं कैसे जाऊं, नदी तो है, पुल तो है ही नहीं, पानी नदी में पानी बहुत जबरदस्त है। तो विचार किया, कूद पड़ता हूं, ये छोटी सी नदी तो है, मेरे गुरु जब इतना बड़ा भवसागर से मुझे पार लगाने के लिए तैयार है तो क्या ये छोटी नदी में मुझे डूबने देगा वो है? जो इस नदी में से डूबने से बचाएगा नहीं वो फिर इतना बड़ा भयंकर भवसागर से मुझे कैसे पार करेगा, और जो भवसागर से मुझे पार लगा सकता है तो इस छोटी सी नदी में मुझे डूबने देगा? ये भाव उनके दिमाग में आ गया, उनके मन में ये भाव आ गया, यानी अपने गुरु के उस सामर्थ्य के बारे में उन्होंने विचार किया कि मेरा गुरु सक्षम है, मुझे डूबने नहीं देगा, डूबकर मरने नहीं देगा, वो बचाएगा। ये नदी तो कुछ नहीं है, हैं? इतने बड़े भवसागर से मुझे बचाने के तैयार है वो गुरु, तो ये नदी तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। पूरा विश्वास हो गया तो कूद पड़े, और जहां उनका पहला चरण पड़ा तो चरण पड़ने से पहले वह कमल का फूल निकल आया, पट ले गया। वो फूल में ही वह अपने चरण रखे, फिर दूसरा चरण रखते हैं तो फिर वही कमल का फूल। तो पूरी नदी में वह इस तरह चलकर पार कर गए जैसे कि हम जमीन में चलते हैं। तो पानी में तो उनका चरण पड़ा ही नहीं है, तो यह तो गुरु की कृपा हुई ना, यही तो गुरु की कृपा है। और जो पानी में चरण ही नहीं पड़ा तो डूब के मरने के तो कोई प्रश्न ही नहीं है, तो फटाफट आ गए। अरे तू तो इतना दूर था, नदी में पानी बहुत जबरदस्त था, तू आया कैसे, पुल तो थी नहीं। बोले महाराज, कमल का फूल जो था उसी फूल के ऊपर पैर रख के मैं नदी से पार कर गया, तब आज से तेरा नाम पद्मपादाचल है। आज से तेरा नाम क्या हुआ? पद्मपाद। तो भगवान शंकर का नाम क्या है? पद्मपाद। ये अर्थ निकला कि नहीं है? नित्यम योगी मनः सरोज दल संचार क्षमत त्वत्क्रम। तुम्हारे चरण नित्य निरंतर योगियों के हृदय रूपी कमल में संचरण करते हैं, करने में सक्षम है। और योगियों के हृदय में आपके चरण पड़ने पर न आपके चरण को कोई कष्ट होने वाला है, न योगियों के हृदय को कोई पीड़ा होने वाला है। समझे कि नहीं? आप हाथ फैलाकर सोए हो और आपका पति या आपकी पत्नी रात को अंधकार में उठकर बाथरूम जाने की तैयारी की बत्ती जलाए बिना, और संयोग से आपके हाथ में उसका चरण पड़ गया, वो पांव रख गई या रख गया, तो आपका निद्रा, आपकी निद्रा भंग होगी कि नहीं? आपको पीड़ा होगी कि नहीं? बोलो। आपके हाथ में कोई पांव रख दे, चल जाए, कुचल कर जाए, तो आपको पीड़ा नहीं होगी? हाथ में किसी का पांव पड़े तो पीड़ा हो सकती है, तो आपका तो हृदय तो कितना कोमल है, और वहां यदि किसी का चरण पड़े तो कैसे सहन करोगे भाई? और शिव का चरण कहां पड़ता है? हृदय रूपी कमल में। और हृदय रूपी पत्थर कहां होता तो चलो ठीक था, हृदय को कमल कह दिया, और वहां पांव रखता है कौन, चरण रखता है कौन? तो शिव। शंभो, ये संबोधन, हे शंभो। यहां दूसरा संबोधन है विभो, अंतिम लाइन में विभो ये संबोधन है। हे शंभो, हे विभो, व्यापकत्वात् विभो, नित्यम योगी मन सरोज दल संचार क्षमस्त्वत्क्रम। क्रम माने चरण, त्वत्चरण, त्वत्क्रम। तीन जब आपका चरण ऐसा है तेना फिर कथम कठोर यमराट वक्ष कवाट अच्छति। ऐसे कोमल चरणों से जो नित्य योगी के हृदय के चरण कमल हृदय कमल में विचरण करने वाले चरणों द्वारा दुनिया में सबसे कठोर से कठोर हृदय वाला यमराज की जो छाती है उस छाती में जब आपने प्रहार करके उसके छाती को फोड़ डाला कैसे संभव हुआ भाई हा? ये तो ठीक उसी तरह हुआ अभी अभी मथ कर निकाले हुए मक्खन के गोले से पत्नी के साथ झगड़ा हुआ तो उसके खोपड़ी को फोड़ डाला मारा उसके खोपड़ी में क्या मारा अभी अभी मत के वो बर्फ में जमाए हुआ नहीं वो फ्रिज में रखा हुआ तो थोड़ा कठोर होगा अभी अभी मत के निकाला था मक्खन का गोला और हाथ में गोला था उसी समय में पत्नी से झगड़ा हो गया मारा उठा के उसके खोपड़ी में और उस गोले से खोपड़ी फूट गए विश्वास करोगे फूटेगा यहां हुआ क्या कहां तो नित्य योगी के हृदय रूपी कमल में विचरण करने वाले आपके कमल रूपी माने चरण इतना नरम चरण और कहां यमराज का कठोर से कठोर वक्षस्थल हृदय और वहां आपने जो लात मारी एक बार से दूसरी बार लात मारना नहीं पड़ा एक ही लात से यमराज खत्म वक्ष कपाट क्षति तो सुना है ना आप लोगों ने मार्कंडेय ऋषि का प्रसंग सुना है कि नहीं बहुत छोटे बालक थे मार्कंडेय ऋषि 6 वर्ष के 7 वर्ष के बालक और खेल में ही मस्त थे मनोरंजन में खेल में ही मस्त थे नारद जी वहां पहुंच गए नारद जी ने कहा हे मार्कंडेय क्या चक्कर है तुझे कुछ पता भी है दुनियादारी का तेरी आयु केवल एक मुहूर्त की है तो इस संसार में एक मुहूर्त तक ही अब जिएगा उसके बाद तुझे मरना है आयु एक मुहूर्त की है और तू खेल रहा है खेल में ही मस्त है अरे भाई जीवन को सफल करने के लिए कुछ करना चाहिए